समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिसका आपको है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल के मैदान की गतिविधियां और आर्थिक जगत पर हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है, जयंती या फिर जन्मदिन। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लवलीन निगम और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट वीसी प्रमोद। प्रमोद नमस्कार।
नमस्कार लवलीन मैम, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स हु ट्यून्ड इन टू अस ऑन 100.1 एफएम गोल्ड। एंड एज राइटली सेड, वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। बट वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। कैंपेनिंग इंटेंसिफाइज फॉर फर्स्ट फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शंस।
प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में चुनाव रैली कर रहे हैं, शाम को वे महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करेंगे।
दिल्ली कोर्ट डिनाइज इंटरिम बेल टू बीआरएस लीडर के कविता इन कनेक्शन विद द लिकर पॉलिसी स्कैम।
और सोने के भाव अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, 10 ग्राम सोना 71,000 रूपये के पार हो गया है।
नॉर्थ अमेरिका टू विटनेस अ टोटल सोलर एक्लिप्स टुडे।
आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we'll talk about the first solar eclipse of the year 2024. North America will witness a rare astronomical phenomenon, a total solar eclipse today. Beginning over the Pacific Ocean, this celestial event will traverse Mexico, United States and Canada. As per Indian Standard Time, IST, the total solar eclipse will begin at 9:12 p.m. tonight and will end at 2:22 a.m. early tomorrow morning. However, it will not be visible to sky watchers in India.
जी, साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर आज रात लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। मूल रूप से सूर्य ग्रहण पश्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, मेक्सिको, उत्तरी अमेरिका में ही दृश्यमान होगा, यानी भारत में नहीं दिखेगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। कभी कभी चंद्रमा सूर्य के प्रकाश का केवल एक भाग ही रोकता है, इसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य की सारी रोशनी को अवरुद्ध कर देता है तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। जैसे ही चंद्रमा सूर्य की रोशनी को अवरुद्ध करता है, ये पृथ्वी के एक हिस्से पर छाया डालता है। पृथ्वी के घूमने पर चंद्रमा की छाया एक निशान बनाती है और ये एक रिंग की तरह दिखने लगता है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। उस रास्ते में चंद्रमा कुछ मिनट के लिए सूर्य की रोशनी को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है और दिन में ही ऐसा लगता है जैसे एकदम अंधेरा हो।
जी, मुझे याद है बचपन में जब कभी आता था तो हम बिल्कुल भागते थे बाहर देखने के लिए। हालांकि वी यूज्ड टू वेयर दोस सोलर ग्लासेस।
जी, क्योंकि आपको नेकेड आईज से नहीं देखा।
जी जी, आपने भी देखा होगा,
बहुत देखा।
Total darkness is interesting for scientists who study the sun's atmosphere, called the corona. The corona is very dim. It's usually hard to see because the sun is so much more brighter, but when the moon blocks the sun's light during an eclipse, all you can see is the light from the corona. Total solar eclipses over the land where people can see them don't happen very often, but when they do happen, the moon gives scientists and the rest of us a glimpse at the corona's beautiful streams and ribbons.
इस साल का पहला सूर्य ग्रहण अपने आप में खास माना जा रहा है। आज लगने वाला ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और ये काफी लंबा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत दक्षिण प्रशांत महासागर में होगी। इससे पहले इस तरह का सूर्य ग्रहण 1970 में दिखा था और अगली बार 2078 में दिखेगा। आज के ग्रहण के दौरान आकाश का पूर्ण अंधकार हो जाएगा। मेक्सिको, अमरीका, कैनेडा के बीच 185 किलोमीटर की दूरी पर यह दिखाई देगा। प्रत्येक अमरीकी राज्य में आज कम से कम आंशिक सूर्य ग्रहण का तो अनुभव होगा और ये दुर्लभ होगा, लेकिन क्यों दुर्लभ होगा वो भी हम बता दें कि हर साल 2 से 5 सूर्य ग्रहण वैसे हो सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण 18 महीने में एक बार होता है। पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर 400 वर्ष में केवल एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आज पूर्ण सूर्य ग्रहण जो उत्तरी अमरीका, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमरीका और कैनेडा से होकर गुजरेगा। इस प्रकार का सूर्य ग्रहण किसी भी स्थान विशेष के लिए दुर्लभ घटना है। रॉयल म्यूजियम ग्रीनविच के अनुसार एक बार जब पृथ्वी पर कोई स्थान पूर्ण सूर्य ग्रहण देख लेता है तो उस भाग में अगला सूर्य ग्रहण 400 वर्ष बाद लगता है। प्रमोद
जी, एब्सोल्युटली, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्सेस, एज यू राइटली सेड, टोटल सोलर इक्लिप्स, एनुलर सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स एंड हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टोटल सोलर इक्लिप्स। एनुअल सोलर इक्लिप्स व्हेन द मून पासेस इन फ्रंट ऑफ द सन बट इट इज नॉट एट इट्स नियर और द फार्थेस्ट पॉइंट। And in this scenario, the moon covers the sun in such a way that only the periphery of the sun remains visible, looking like a ring of fire. And a hybrid solar eclipse, the rarest type of solar eclipse, is witnessed when an eclipse shifts between annular and total as the shadow of the moon moves across the globe. In this case, some parts of the world see a total solar eclipse, while others observe an annular solar eclipse.
आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को अवरुद्ध कर देता है, उसे अर्धचंद्राकार बना जाता है। आंशिक और वलयाकार दोनों ग्रहणों के दौरान चंद्रमा की छाया से ढके क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र चांद की छाया का मध्य और सबसे गहरा भाग आंशिक सूर्य ग्रहण देखेंगे। आंशिक सूर्य ग्रहण का सबसे सामान्य प्रकार होता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दौरान देखा जाता है जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के एक ही तरफ होते हैं, और अमावस्या लगभग 30 दिन में यानी महीने में एक बार आती है, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग इतना ही समय लगता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हर महीने सूर्य ग्रहण होता है। सालाना 2 से 5 बार ही होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा उस तल में नहीं करता है जिस पे जैसे जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष लगभग 5 डिग्री झुका हुआ है, और इस कारण अधिकांश समय जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने के लिए या तो बहुत ऊंची या बहुत नीची होती है।
दैट्स राइट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, इफ यू थिंक ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन एज अ डिस्क एंड द मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एज अनदर डिस्क, देयर इज अ 5 to 6 degree angle between the two discs. However, any time you have two circles that intersect each other as the two discs do, there will be just 2 points at which the intersection occurs. These 2 points on the moon's orbit is when the moon lies in the same plane as the earth's orbit are called nodes, and the line connecting these 2 points is also called the line of nodes. Whenever the new moon crosses one of these 2 nodes, there is an opportunity for solar eclipse.
जी, हर साल में 2 से 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं जैसे कि अभी हमने कहा, और लगभग 18 महीने में एक बार होता है। लेकिन जैसे बताया गया है, पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर 400 वर्ष में केवल एक बार सूर्य ग्रहण होता है। इसके अलावा विश्व का लगभग 70% भाग जलमग्न है, हम सभी जानते हैं, और आधी भूमि निर्जन मानी जाती है। इसलिए ऐसा बहुत कम होता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और बहुत से लोग इसे देख पाते हैं। याद रखें, कभी भी सूर्य जो है हमें सीधे नहीं देखना चाहिए, जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। इस संपूर्ण घटना को सुरक्षित रूप से देखने के लिए आपको सोलर ग्लास या फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। केवल समग्रता के पथ पर चलने वाले लोग ही जो है इसको नेकेड आई से देख सकते हैं, और कोरोना को देखने के लिए उन्हें संक्षेप में हटा पाएंगे। तो जो लोग इसमें नहीं है जहां सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, उन्हें भी पूरे समय ये जो है नहीं देखना चाहिए।
एब्सोल्युटली, दिस इज बिकॉज अ टोटल इक्लिप्स इज ओनली विजिबल इफ वन इज स्टैंडिंग इन द अम्ब्रा एंड द अदर पार्ट ऑफ द शैडो इज कॉल्ड द पेनम्ब्रा व्हिच इज नॉट एज डार्क एज द अम्ब्रा। द अम्ब्रल शैडो इज वेरी स्मॉल, कवरिंग ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। इन फैक्ट द एंटायर पार्ट ऑफ द अम्ब्रल shadow during a solar eclipse will only cover less than 1% of the globe. This is why only very few people will get to see a total eclipse at a time. Everyone observing the partial phases of the eclipse, and for those outside the path of totality, that's the entire event, will need to wear solar eclipse glasses, while cameras, telescopes and binoculars will need solar filters placed in front of their lenses.
और लोकसभा चुनाव, आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए जो है हम कोई न कोई जानकारी किसी न किसी राज्य से देते हैं।
जी, आई विल टेक यू टू उत्तराखंड पहले, लवलीन।
जी, लोकसभा चुनाव के लिए देश के प्रमुख संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज जानकारी। उत्तराखंड के सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान की। राज्य के 83,37,914 मतदाता चुनाव में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के गढ़वा लोकसभा सीट के लिए 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं।
उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा सीट पर 2024 के इस चुनाव में 13 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। भाजपा के अनिल बलूनी, कांग्रेस के गणेश गोदियाल, बसपा के धीर सिंह और उत्तराखंड क्रांति दल के आशुतोष नेगी ने इस सीट के लिए अपना नामांकन किया है। साथ ही सैनिक समाज पार्टी के डॉक्टर मुकेश चंद्र पंत, सोशलिस्ट यूनिट सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की रेशमा, उत्तराखंड सामंता पार्टी के विनोद कुमार शर्मा, बहुजन मुक्त पार्टी के श्यामलाल और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की सुरेशी देवी भी इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी इस में चुनावी मैदान में है। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में कुल 14 विधानसभा क्षेत्र हैं और इस सीट पर 13,69,388 मतदाता चुनाव में उम्मीदवारों का भाग तय करेंगे। वहीं गढ़वाल सीट पर 3,03,080 मतदाता पहली बार लोकसभा चुनाव में अपना मत डालेंगे। सुगम मतदान के लिए गढ़वाल लोकसभा सीट पर 2,357 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यह सीट चमोली, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनी है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
Moving on to Assam, a cycle rally was organized at Bokakhat district of Assam this morning under the sweep initiative of ECI for the upcoming election polls. A report.
A cycle rally was organized this morning at the initiative of Systematic Voters Education and Electoral Participation Sweep Cell in Bokakhat election district. The rally started from SDO office in Bokakhat and culminated at Bokakhat's higher secondary school. Paracyclist Rakesh Banik, the state election icon, participated in the cycle rally. Bhavananda Kalita, a senior citizen of Bokakhat, flagged off and inaugurated today's cycle rally. After the cycle rally, an awareness program was also organized at the premises of Bokakhat Higher Secondary School to ensure an increase in polling percentage in Bokakhat district for the upcoming Lok Sabha elections to be held on 19th and to encourage the participation of young voters. Speaking as the chief guest at the awareness program, state election icon Rakesh Banik urged everyone to vote without succumbing to the temptation of temporary offerings in form of money and goods. District election officer of Bokakhat, Simi Karan, urged all the voters to reach the polling stations on 19th April and exercise their franchise to strengthen the democratic setup of the country. The Election Commission of India has launched several mobile apps and websites to increase transparency and accountability for the upcoming Lok Sabha polls. Sasankar Dhaval Saikia, assistant professor at JDSG College, Bokakhat, explained how these mobile apps and websites can be used by the citizens. With Manas Pratim Sarma's report from Guwahati, this is Deeksha Saxena for Parikrama.
Moving on to Mumbai, with the first phase of general elections fast approaching, it is not just the political parties that have upped the ante, but even the election commission as it gets ready to fight voter apathy, especially in urban areas. The chief electoral officer, Maharashtra, meanwhile has announced various special initiatives for the benefit of senior citizens and Divyang voters. Details from our Mumbai correspondent.
Maharashtra had recorded a voter turnout of just 61% for the 2019 general elections. To increase this turnout for the upcoming polls, the chief electoral officer of Maharashtra has taken many initiatives. Briefing about the size of the electorate in Maharashtra, the chief electoral officer, Mr. S. Chokalingam, said,
"The total number of voters in the state of Maharashtra is 9 crore 22 lakhs, out of which 4 crore 79 lakhs are males and 4 crore 43 lakhs are females, and 5,500 people belong to the third gender. And the number of polling booths, 98,114 polling booths, including the auxiliary polling booths."
Speaking to Akashwani, Mr. Chokalingam said, senior citizens and the Divyang persons can apply for home voting. He also spoke about Braille voter information slips.
Number of voters above 100 are around 52,000 in the state of Maharashtra. Likewise, Divyang voters are around 6 lakh, out of which around 1 lakh 16,000 people are blind voters. We take special care As we know, anyone above 85 years of age can apply for home voting. If they are not able to go to the booth, form number 12D is given to them and they can apply through that form to do home voting. The people will come to their home and using postal ballot, the voting will take place at their place only. Likewise, for Divyang voter also, if they have the benchmark disability of more than 40% disability, they are entitled for home voting. For the blind voters, again they are eligible, but for the people who want to go to the polling booth as well as voting at home, we give voter information slips in braille with cooperation of National Association for the Blind in Mumbai. We are printing braille voter information slip, and as there are special arrangements in the EVM machine also, the numbers are available in the braille system. There is a information booklet available in the polling booth which shows which candidate in which number. After identifying that in the EVM, they can press the button which is related to the particular number.
Talking about young voters, the Chief Electoral Officer spoke about the importance of electoral literacy clubs.
Related to electoral literacy clubs, we start from 9th standard onwards in the schools as well as in the colleges, junior colleges and colleges, and two type of literacy is undertaken. First, educating them about that they are entitled for registration as soon as they cross the year of 18. Election Commission has went ahead and nowadays permits the new electors to apply even before they turn 18. Earlier they can apply only after they are turning 18. Now they can apply in advance and their application will be considered as soon as they turn 18. So this sort of information is spread through electoral literacy clubs, as well as we use their services to spread awareness among the village, among the society, especially using the services of NSS and NCC students. So electoral literacy clubs play a big role in spreading electoral literacy among the students as well as in the society.
All these initiatives, besides the special campaigns like Mera Pehla Vote Desh Ke Liye Turning 18 and You Are the One on various social media platforms, based on the overall theme of Chunav Ka Parv Desh Ka Garv, the voting percentage will hopefully increase. Maharashtra will vote in 5 phases in the upcoming general elections. Voting will be held from 19th April to 20th May. With Pratna, this is Nisha Rani for Parikrama from Mumbai.
Moving on to Bangalore, the Bangalore Water Supply and Sewerage Board has come out with several measures to manage water supply in Bengaluru due to water woes caused by dried up reservoirs on the Kaveri River. More from our correspondent.
Due to dried up reservoirs on Kaveri River basin, Bengaluru is facing severe water shortage since last month. The city sources 1470 MLD water from Kaveri River and 650 MLD from bore wells. Bangalore Water Supply and Sewage Board BWSSB has taken several measures to manage limited water available with it till the monsoon rains arrive. Apart from supplying free water to low-income groups, it has introduced various measures to regulate water supply in the city. It has made use of aerators compulsory at restaurants, malls and apartments for limiting the water usage. It has started imposing fine of 5,000 rupees and 50% cut in water supply if the aerators are not used. Those who install aerators and take other water conservation measures, BWSSB is giving them green star ratings. It has also cut down on the supply by 10% for bulk users and is planning to save 60 million liters of water every day through these measures. It has also made use of sewage treatment plant mandatory for the bulk users, who now have to use the treated water for their garden, cleaning, construction and fountains. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
Moving on to Vijayawada, purchase of unreserved train tickets through general counters has now become easier with the introduction of QR code facility over Vijayawada division. This facility was introduced at 19 counters at Vijayawada, Elluru, Tenali and Rajamundry railway stations of the Vijayawada division of South Central Railway. More on this from our correspondent.
Giving big push to digital and cashless transactions, South Central Railway Vijayawada Division has introduced quick response QR code facility for purchasing tickets at general counters recently. This negates the need for carrying cash and tendering exact change by the passengers while purchasing the ticket. For this, the fare repeaters are provided at general booking counters in important stations to display the important details entered by the ticket issuing clerk. These details can be checked by the passenger for more accuracy and transparency. Quick response code, which is generated after calculation of the fare, will be displayed and the same can be scanned by the passenger through the mobile payments app. After confirmation of the receipt of the amount, the ticket will be generated and issued to the passenger. Speaking to Akashvani News, Vijayawada Division Senior DCM V. Rambabu stated that in initial phase, this QR code facility has been introduced in 19 quarters at 4 major stations and gradually the facility will be extended at all the major stations of Vijayawada Division. He appealed to passengers to utilize the newly added QR facility and encourage cashless transactions. Allu Murali for Parikrama from Vijayawada.
And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We remember Mangal Pandey, whose courage helped arouse the fire of independence in the hearts of native sepoys. Mangal Pandey hailed from Balia district of Uttar Pradesh. He was a sepoy of the 34th Infantry stationed at Barakpur.
In 1857, the Britishers introduced a new Enfield rifle that required a soldier to bite off the ends of greased cartridges in order to load the weapon. A rumor spread that the lubricant used in the cartridges was either cow or pig lard. A belief arose among the sepoys that the British had deliberately used the lard on the cartridges.
On March the 29th, 1857, Pandey tried to arouse his fellow sepoys to rise up against the British officers.
Yahi mauka hai. Is baar ya us baar.
Aag aisi lagi hai dilon mein, na puchhegi kisi ke bujhaye.
He attacked two of those officers, attempted to shoot himself after having been restrained, and eventually was overpowered and arrested. Pandey was soon tried and sentenced to death. He was court-martialed and hanged at Barakpur on 8th of April 1857.
After 1 month of this incident, on the 10th of May 1857, sepoys revolted in Meerut, and that led to the outbreak of the First War of Independence in 1857. AIR News salutes the brave son of the soil.
We also pay tribute to Ropui Liani, the daring Mizo freedom fighter. Born in 1828, Ropui Liani was the daughter of a great Mizo chief, Lal Savunga, and was married to Wandula, an equally prominent chief of South Lushai Hills. In early 1890, the British started to establish supremacy over some Mizo regions. However, Mizo chiefs did not accept British authority.
Ropui Liani took the reins of principality after the death of her husband, Wandula, and began to rule from her village, Ralwong. She challenged the British authority and encouraged people to disobey Britishers' diktats.
She told other chiefs who had joined the British,
"Even if you all surrender, I am here, the daughter of Lal Savunga. We will never surrender to foreign rulers."
She became a rallying point for Mizo principalities against the British.
Enraged by her resistance, the Britishers sent several campaigns to subdue her. In one such campaign, British Lieutenant Stewart, along with two soldiers, was killed. Ropui Liani and her son, Lal Suwama, were accused of instigating other chiefs by the British. Later, the British were successful in arresting her. Even after her capture, Britishers feared that her presence, even as a captive in the area, would escalate tension and disaffection among the locals. Thus, from the 8th of April 1894, she was held captive for almost 2 years in Chittagong jail. Ropui Liani died in prison in 1895, leaving behind an inspiring legacy of our freedom struggle. We salute the great daughter of the soil.
We also remember Bankim Chandra Chattopadhyay, also known as Bankim Chandra Chatterjee, who died on the 8th of April 1894. He is famous as the author of the national song of our country, Vande Mataram. Bankim Chandra Chatterjee was born on the 27th of June 1838 in Chaubis Parganas district of Bengal. After his graduation, he was appointed as deputy collector in Bengal.
Bankim Chandra began his literary career as a writer of verse. His first Bengali novel, Durgeshanandini, was published in 1865.
Bankim Chandra Chatterjee's most famous novel was Anandamath, which is based on the famous Sanyasi revolt. Anandamath contained the song Bande Mataram, which was later adopted as our national song.
Bankim Chandra also wanted to bring about a cultural revival in Bengal. His novels have been translated in almost all the major languages of India. Bankim Chandra passed away on the 8th of April, 1894.
And now in business news, benchmark indices ended at their fresh closing highs today amid positive global cues and buying action in IT and auto names. BSE Sensex rose 494 points or 0.67% to close at 74,742.5. The Nifty 50 added 153 points or 0.68% to settle at 22,666. In the forex market, the rupee ended marginally lower at 83 rupees and 31 paise against the US dollar today. At the multi-commodity exchange, gold futures for June contracts were trading at around 70,918 rupees per 10 grams. Silver futures for May contracts were trading around 81,770 rupees per kilogram when reports last came in. Gold and silver prices reached an all-time high in today's opening trade. And in intraday trade, Brent crude was trading at $90.22 per barrel.
और अब खेल जगत की बातें करते हैं. आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 13 रन से हरा दिया. लखनऊ सुपर जायंट्स ने 164 रन बनाए थे और जवाब में गुजरात टाइटंस 18.5 ओवर में सिर्फ 130 रन ही बना सकी. यश ठाकुर को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया.
That's right. In tennis, Sumit Nagal became the first Indian to enter the Monte Carlo Masters singles main draw in 42 years, beating Facundo Hias Acosta of Argentina in a three-setter in the final qualifying round in Monte Carlo yesterday. Nagal, ranked 95th in the world, defeated his world number 55 rival in a grueling match.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन. आज सबसे पहले बात करते हैं शरण रानी की. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादक थीं. वे प्रथम महिला थीं जिन्होंने सरोद जैसे जो है वाद्य यंत्र को नई ऊंचाइयां प्रदान की. इसी कारण उन्हें प्रशंसक उन्हें सरोद रानी के नाम से पुकारते थे. शरण रानी 20वीं सदी की म्यूजिक लीजेंड मानी जाती हैं. पद्मभूषण पद्मश्री से सम्मानित की जा चुकी शरण रानी को जो है संगीत के प्रति उनके समर्पण के कारण ही कई पुरस्कार और सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया.
That's right. And today is the birthday of Nithya Menon. She is an Indian actress and singer who works primarily in Malayalam, Tamil and Telugu films. Having worked in more than 50 films, she is acknowledged for her acting versatility. She made her debut in the film Mission Mangal. लवलीन आपने देखी होगी जरूर.
जी बहुत अच्छी मूवी.
वी हैव अ सॉन्ग फ्रॉम दैट मूवी. वी कैन लिसन टू दैट सॉन्ग.
मंजिल दूर 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 है मुश्किल बात है फिर भी खाब 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 में एक ट्विंकल याद है. मंजिल दूर 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 है मुश्किल बात है फिर भी खाब 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 में एक ट्विंकल याद है. चांद को करके रहेंगे आज.
और अब एक ऐसे सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक की बात करते हैं जिनका वास्तविक नाम था शिवपुत्र सिद्धरमैया कुमकाली. हम बात कर रहे हैं पंडित कुमार गंधर्व की. महान संगीत कुमार गंधर्व की आज जयंती है. कुमार गंधर्व का भारतीय संगीत की दुनिया में जो है इतना कद विशाल है जिसे शायद ही कभी कोई छू पाए. बचपन से ही उनमें संगीत की चमत्कारिक प्रतिभा थी. कुमार जी ने संगीत की शिक्षा जरूर प्राप्त की लेकिन उनकी सांगीतिक दक्षता शिक्षण से परे थी. शास्त्रीय संगीत की परंपराओं की समझ के साथ स्वतंत्र होकर उन्होंने अपने गायन को उस शीर्ष तक पहुंचा दिया जहां एक ध्रुव तारा की तरह उनका संगीत उनके राग हमेशा संगीत के नए साधकों को राह दिखलाते रहेंगे.
That's right. The name Kumar Gandharv is a title given to him when he was a child prodigy. A Gandharv is a musical spirit in Hindu mythology. Let's listen to one of his compositions.
उनके राग और उनकी जो बंदिशें हैं, तराने, रूढ़ राग, धुन, उगम राग, भजन, लोक संगीत, ऋतु संगीत, कुमार जी के अथाह रचना सागर के चुनिंदा मोती हैं। लेकिन अब समय हो चला है श्रोताओं आपसे इजाजत लेने का, तो लवली निगम और वीसी प्रमोद को अनुमति दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार।